शारदा जी हाँ में सिर हिलाते हुए कहती, हाँ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई हो, इसीलिए वो इसका बदला मुझे ले रहा है। बेटी अपने ससुराल में जैसी भी रहती है, उसकी पूरी जिम्मेदारी उसकी माँ की होती है। उसकी माँ उसे जो सिखाकर भेजती है, वही वो अपने ससुराल में करती है, और तुम्हें देखकर लगता है कि शायद मैंने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारे फैसले से क्या होगा? हम सबकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। जहां कल तक हमारी इतनी बड़ी प्रिंटिंग प्रेस थी, वहीं आज मैं एक छोटी सी नौकरी कर रही हूं। और उसके बाद जब लोगों को ये पता चलेगा कि तुम अपने पति का घर छोड़कर यहां आकर रहने लगी हो, तो तुम्हें क्या लगता है ये दुनिया हमें जीने देगी? नहीं अरुणिमा, ये दुनिया हमें कच्चा खा जाएगी। और सबसे बड़ी बात, वो तुम्हारी शादी टूटने का सबसे बड़ा इल्ज़ाम मुझ पर लगाएगी। अरुणिमा के आंसू ही नहीं रुक रहे थे उसकी माँ के शब्द सुनकर। क्या वो सच में एक असफल पत्नी थी? क्या उसने सच में अपने रिश्ते को निभाने में अपनी तरफ से कमी छोड़ी थी? उसकी माँ ने तो उसे अच्छे संस्कार दिए हैं और अपने ससुराल को ही अपना घर समझने की सीख दी है। उसकी माँ के संस्कार गलत नहीं है, वो अपनी माँ को कभी भी समाज के सामने झुकने नहीं देगी। वो अपनी माँ को गलत नहीं कह सकती थी, लेकिन उसे महसूस हो गया था कि उसकी माँ ने उसका त्याग कर दिया है। ये कुछ इसी तरीके से था कि या तो अपने ससुराल में रहो या फिर कहीं पर मर जाओ, लेकिन लौटकर वापस अपने मायके मत आओ। जिस घर में डोली गई है उसी घर से अर्थी उठेगी तुम्हारी। अरुणिमा जोर जोर से रोए जा रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसका एकमात्र सहारा उसकी माँ ने उसे ठुकरा दिया था और वापस जाने की सलाह दे रही थी, लेकिन अरुणिमा को पता था कि अगर वो वापस गई तो शायद अब कभी नहीं लौट पाएगी। तभी मिश्री दरवाजे की तरफ देखती है और हैरानी से कहती है, जीजा जी। मिश्री की बात सुनकर अरुणिमा की सांस गले में अटक जाती है। वो कसकर शारदा जी के हाथों को पकड़ लेती है। शारदा जी अरुणिमा की घबराहट महसूस कर सकती थी। उन्होंने अरुणिमा के आंसू साफ करते हुए कहा, अंदर जाओ और मुंह धो लो। आस्तिक अभी भी दरवाजे पर ही खड़ा था, लेकिन अरुणिमा ने एक भी बार अपना चेहरा घुमाकर आस्तिक को नहीं देखा था, बल्कि वो तुरंत अपनी साड़ी को संभालते हुए अंदर कमरे की तरफ भाग जाती है। मिश्री जल्दी से सोफे पर रखा सामान हटाती है और शारदा जी कहती हैं, राजा साहब आप दरवाजे पर क्यों खड़े हैं, आइए अंदर आइए। आस्तिक अंदर आता है और सोफे पर किसी राजा की तरफ बैठ जाता है। वो अपने एक पैर को दूसरे पैर पर क्रॉस करते हुए सबको देख रहा था। मिश्री अंदर किचन में पानी लेने चली जाती है। शारदा जी कहती हैं, राजा साहब आप अचानक यहाँ, आप अगर आने से पहले बता देते तो। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ, आस्तिक में बिना किसी एक्सप्रेशन के शारदा जी की बात को काटते हुए कहा। शारदा जी जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, आप ही की पत्नी हैं, आप ले जा सकते हैं। वो तो बस थोड़ी देर के लिए मुझसे मिलने आई थी, वैसे आपको भी आने की जरूरत नहीं थी, वो अपने महल वापस लौट जाती, आस्तिक ने उबासी लेते हुए कहा। अगर नाटक खत्म हो गया है तो मेरी बीवी को बुलाएं। शारदा जी का पूरा चेहरा गुस्से से भर गया था। उनका मन कर रहा था कि आस्तिक का सर फोड़ दें, लेकिन वो अपनी हदें जानती थीं। शारदा जी कमरे में जाती हैं तो अरुणिमा दरवाजे के पास खड़ी कांप रही थी। शारदा जी उसे बाहर आने के लिए कहती हैं तो अरुणिमा जल्दी से नामे सर हिलाती है। शारदा जी गुस्से में आंखें दिखाते हुए अरुणिमा की बाजू पकड़ती हैं और उसे अपने साथ बाहर लेकर आती हैं। आस्तिक के सामने आने के साथ ही अरुणिमा जल्दी से शारदा जी के पीछे छुप जाती है। वो किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी माँ के आंचल को पकड़े हुए थी। शारदा जी ने अरुणिमा का हाथ पकड़ते हुए उसे आगे की तरफ धकेलते हुए कहा, अरु जाओ, राजा साहब तुम्हें लेने आए हैं। लेकिन अरुणिमा अपनी माँ के आंचल को छोड़ने को ही तैयार नहीं थी। करीब 5 मिनट तक शारदा जी अरुणिमा को आस्तिक के पास भेजने की कोशिश कर रही थी, और अरुणिमा हर बार शारदा जी के आंचल को और मजबूती से पकड़ रही थी। इससे ज्यादा आस्तिक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ा होता है और अरुणिमा की कलाई पकड़ लेता है। अरुणिमा घबराई और डरी हुई नजरों से आस्तिक को देखने लगती है, तो आस्तिक उसे अपनी नजरों से घूरता हुआ दरवाजे की तरफ खींचने लगता है। अरुणिमा पलटकर अपनी माँ को देखती है और अपनी आंखों से ही अपनी माँ से ये रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे बचा ले, लेकिन शारदा जी इस समय अपने मगरमच्छ के आंसू निकालने में व्यस्त थी। लेकिन किचन के दरवाजे पर खड़ी मिश्री जोर से रोए जा रही थी। उसे अच्छी तरह से अंदाजा हो गया था कि उसकी बहन के साथ जरूर कुछ गलत हो रहा है। अरुणिमा जाना ही नहीं चाहती थी, वो अपने कदमों को हर जगह पर जमा देना चाहती थी, लेकिन आस्तिक उसे खींचता हुआ घर से बाहर लाता है और गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे धकेलते हुए अंदर पटक देता है। अरुणिमा देख सकती थी कि आस्तिक के चेहरे पर कितना गुस्सा दिख रहा है। इसी बात से वो अंदाजा लगा सकती थी कि आज रात उसके लिए फिर से एक दर्दनाक रात होगी। जैसे गाड़ी महल की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे अरुणिमा को अंदाजा हो गया था कि उसकी माँ ने उसे ठुकरा दिया है और उसी की वजह से उसकी बहन का स्कूल भी छूट गया है। शायद उसकी माँ सही कह रही है, वो एक अच्छी बेटी नहीं है, एक अच्छी बहन नहीं है और ना ही एक अच्छी पत्नी है, शायद उसी में कोई कमी है। अरुणिमा ने अपने मन में एक बार सोचा कि आज जो उसने हरकत की है, इसके लिए आस्तिक आज रात उसे जान से मार दे तो ही अच्छा होगा। इससे बड़ी सजा उसके लिए और कुछ नहीं हो सकती है। वो एक ही पल में सारी जिम्मेदारियों से आजाद हो जाएगी। अच्छी बेटी, अच्छी बहन और अच्छी पत्नी होने की जिम्मेदारियों से वो एक ही बार में आजाद हो जाएगी। फिर कोई भी उससे अच्छाई की उम्मीद नहीं करेगा। अरुणिमा अपनी माँ की खराब हालत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा रही थी। वो हर चीज के लिए खुद को दोषी महसूस करवा रही थी। वो एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई, तभी तो उसकी माँ उसे अपना नहीं सकती है, और ना ही वो एक अच्छी पत्नी बन पाई, तभी तो उसका पति उसे प्यार नहीं करता है। अरुणिमा ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे अपनी गर्दन पर आस्तिक के हाथों की पकड़ महसूस हुई। वो घबराते हुए आस्तिक को देख रही थी, जो अपनी लाल निगाहों से आस्तिक को घूर रहा था।